शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में आप सभी हमारे प्रिय भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। 2 मिनट प्रभु स्मृति का गीत बजेगा। बहुत प्रेम पूर्वक गीत सुनेंगे, परमात्मा का आह्वान करेंगे, तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सभी से नम्र अनुरोध है साइलेंस में बैठकर मधुर गीत सुने। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में विश्व शांतिदाता परमपिता परमात्मा के प्रिय संतान वैश्विक एकता के लिए राजयोग अनुभूति इस विषय पर आयोजित 5 दिवसीय राजयोग शिविर में आप सभी मेहमान हमारे प्रिय महान आत्माओं का शांतिवन के मन भावन परिसर में आपके अपने ही घर में डायमंड हॉल में दादियों के तरफ से, वरिष्ठ दीदियों के तरफ से, वरिष्ठ भाई बहनों के तरफ से, मेरे सेवा साथी सभी समर्पित निवासियों के तरफ से जो सभी कॉम्प्लेक्सेस में रहते हैं, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, सभी कॉम्प्लेक्सेस में रहने वाले समर्पित निवासियों की तरफ से आप सभी हमारे प्रिय भाई बहनों का परमात्मा के इस घर में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। जोरदार तालियां बजाएंगे, आप अपने लिए बजाएंगे, खुशी से बजाइए, क्योंकि आप सब मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने के लिए आए हैं। इसलिए इस खुशी में आप सभी योग प्रेमी, प्रभु प्रेमी आत्माओं से निवेदन करते हैं, तालियां अपने लिए, अपने ही स्वागत में जोरदार बजाए। और मंचासीन हमारे वरिष्ठ दीदियों के लिए भी, जो भी हमारे बीच मंचासीन वरिष्ठ दीदियां बैठी हैं, उनके लिए भी आपसे निवेदन है, जोरदार तालियों से हम दीदियों का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करती हूँ मधुर वाणी ग्रुप से सामने आए और आप सबके समक्ष मधुर गीत, स्वागत गीत प्रस्तुत करें। आप सभी महान आत्माएं, आप सभी आए हैं प्यार से, तो भगवान के घर में, आपके अपने ही घर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। इस ग्रुप में गाने वाले सभी भाई विभिन्न डिपार्टमेंट्स में सेवा देते हैं, सतीश भाई जी, रमेश भाई, सुधीर पाल भाई और प्रताप भाई, तो चारों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अब आपके स्वागत में मधुर गीत पेश करेंगे हमारे चारों भाई, जो लिरिक्स भी लिखते हैं, गीत भी गाते हैं, हजारों गीत आपने बनाए हैं, तो ऐसे महान आत्माएं आपके लिए स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे मधुर वाणी ग्रुप।
ओम शांति, ओम शांति। आप आए अपने घर में, आपका अभिनंदन है, अपनों द्वारा आपका स्वागत, बारंबार अभिनंदन है, बारंबार अभिनंदन है। आज युद्ध है या बीमारी या दुख रोग शोक हलचल है, राजयोग में सभी समस्याओं का मिलता हल है, राजयोग के लिए आप आए हैं। आप सब राजयोगियों को इस आज के समय पर, आज इस हॉल में, आप सबका अपने घर में बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली बजा के अपना स्वागत करें।
योग सभी से न्यारा है, राजयोग का योग सिखाने धरा पे प्रभु पधारा है।
भारत का प्राचीन योग ये योग सभी से न्यारा है, राजयोग का योग सिखाने धरा पे प्रभु पधारा है।
आध्यात्म योग से विश्व गुरु भारत होने वाला है।
आइए प्रियात मन, आपका स्वागत प्यारा है, भारत का प्राचीन योग ये।
सरी गरी गप गरी गप रे गप धा पद सद परे
सारी गरी गप गरी गप रे गप धा पद सद परे में शक्ति भर ले।
मैं हूँ कौन, कौन है मेरा, प्रभु से अभी परिचय कर ले, परमात्मा से मन को जोड़ के आत्मा में शक्ति भर ले।
योगी बनो, पवित्र बनो,
योगी ही बनो पवित्र बनो, प्रभु ने पुनः पुकारा है। आध्यात्म योग से विश्व गुरु फिर भारत होने वाला है। आइए प्रिय आत्मन, आपका स्वागत प्यारा है, भारत का प्राचीन योग ये।
आपकी तालियां।
राजयोग से रोग मिटे, सब कायाकल्प हो जाता है। पाप कटते जन्मों के, हर गम ओझल हो जाता है।
राजयोग से रोग मिटे, सब कायाकल्प हो जाता है। पाप कटते जन्मों के, हर गम ओझल हो जाता है।
योगेश्वर ने इसी योग से,
योगेश्वर ने इसी योग से भारत भाग्य संवारा है।
आध्यात्म योग से विश्व गुरु फिर भारत होने वाला है। आइए प्रिय आत्मन, आपका स्वागत प्यारा है, भारत का प्राचीन योग ये। शिव भगवान है, आप बड़े ही भाग्यवान, भगवान के मेहमान है।
आप आए अपने घर में,
आप आए अपने घर में, यहाँ मिलता सबका सहारा है।
आध्यात्म योग से विश्व गुरु फिर भारत होने वाला है।
आइए आत्मन, आपका स्वागत प्यारा है, भारत का प्राचीन योग ये। योग सभी से न्यारा है, राजयोग का योग सिखाने दया पे प्रभु पधारा है।
आध्यात्म योग से विश्व गुरु फिर भारत होने वाला है।
आइए प्रिय आत्मन, आपका स्वागत प्यारा है, आइए प्रिय आत्मन, आपका स्वागत प्यारा है, आइए प्रिय आत्मन, आपका स्वागत प्यारा है, भारत का प्राचीन योग ये।
बहुत सुंदर, भारत का प्राचीन योग सीखने आप सब आए हैं। तो आप सभी योग प्रेमी, प्रभु प्रेमी, जो कि पंजाब, हरियाणा, मुंबई, भारत के अन्य राज्यों से भी पधारे हुए आप सभी हमारे प्रिय मेहमान महान भाई बहनों का प्रभु के इस प्यारे घर में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। कहा जाता है, गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारे हैं, इस डायमंड हॉल में चार चांद लग गए हैं, जब से आप सभी रियल डायमंड्स यहाँ पधारे हैं, जब से आप सभी यहाँ पधारे हैं। आप सबके स्वागत में चार चांद लगाने हेतु हमारे बीच आदरणीय गीता दीदी जी उपस्थित है। आप सभी महान मेहमान भाइयों से अनुरोध है, बहनों से अनुरोध है, करतल ध्वनि से हम दीदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राजयोग शिविर में हम दीदी का संक्षिप्त रूप में परिचय देना चाहेंगे। आप सभी ने देखा भी होगा दीदी को टीवी चैनल्स के माध्यम से। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी है। 1969 में आप ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। 1972 में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए आपने समर्पित किया। प्रारंभ में 21 वर्षों तक आप गुजरात में सेवा करते रहे। सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, भावनगर, गुजरात के जोन में आपने अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात 17 वर्षों तक हमारा जो ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड कैंपस है, वहां पर आपने 17 वर्षों तक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकोमोडेशन को आपने संभाला। देश विदेश में जाकर आपने अनेकों को ईश्वरीय संदेश पहुंचाया है, और साथ ही साथ आपके अनुभव युक्त लेक्चर्स यहाँ होने वाले सभी कार्यक्रमों में रहते ही है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो, टीचर्स ट्रेनिंग हो, बच्चिया हो, राजयोग शिविर हो, सभी प्रोग्राम्स में आपके अनुभव युक्त लेक्चर्स रहते ही है। आदरणीय गीता दीदी जी के लिए मैं कहना चाहूँगी, जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है, कलिया फूलों को मुस्कुराना सिखाती है, आदरणीय गीता दीदी जी राजयोग के द्वारा जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। तो मैं आदरणीय गीता दीदी जी से अनुरोध करती हूँ, आप सभी रियल डायमंड्स का शब्दों के द्वारा स्वागत करें आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति। सभी मिलकर बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर विश्व शांति दाता, नव विश्व निर्माता शिव परमात्मा की प्रिय आत्म संतानों, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली भाइयों और बहनों, आप सभी भाई बहनों का इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में उसके मुख्यालय के सबसे बड़े शांतिवन परिसर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस विशाल डायमंड हॉल में अभी आपके योग शिविर का कार्यक्रम चलेगा। वैसे इस हॉल में 6 मास अक्टूबर से लेकर मार्च एंड तक प्रभु मिलन का बीके भाई बहनों के लिए प्रोग्राम चला। आप अवश्य मानेंगे कि इस हॉल में 1997 से 2017 दिसंबर तक लगभग 25 वर्ष यहाँ पर प्रभु मिलन के कार्यक्रम चले। स्वयं परमात्मा आकर हम सब भाई बहनों से मिलते हैं। इस हॉल में इतने पावरफुल वाइब्रेशंस फैले हैं जिसमें आप सभी भी योग सीखने आए हैं। यहाँ बैठकर बीके भाई बहने प्रतिवर्ष अक्टूबर से मार्च एंड तक मनन चिंतन मंथन और हेडक्वार्टर के वरिष्ठ भाई बहनों के चिंतन से लाभान्वित होते रहे हैं। अप्रैल मास में 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हमारे ऑल इंडिया के सीनियर भाई बहनों की वार्षिक सेवा योजना का मीटिंग चला और तुरंत बाद 15 अप्रैल से 15 जून तक यहाँ योग शिविर के कार्यक्रम चलेंगे। इस बारी पंजाब जोन में पंजाब हरियाणा हिमाचल उत्तरांचल जम्मू कश्मीर कुछ यूपी के सेंटर्स आते हैं। आप सभी अलग अलग स्थानों से आए हैं। मैं हमारी वरिष्ठ दादियों की ओर से वरिष्ठ भाइयों की ओर से और इस राजयोग शिविर की डायरेक्टर शिलू बहन जी की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। राजयोग शिविर के सभी क्लासेस लेने में हमारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका सविता बहन जी, मैं गीता बहन और इस 5 दिवसीय राजयोग शिविर का संचालन करने के साथ वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका के रूप में गीता बहन यहाँ होंगी। आप सभी वैसे तो यहाँ काफी होटल्स है, प्रति वर्ष लाखों टूरिस्ट माउंट आबू हिल स्टेशन होने के नाते घूमने के लिए यहाँ आते हैं, परंतु आप सभी आबू रोड में विद्यालय के इस सुंदर पावन मनभावन परिसर में ठहरे हैं वो बताता है कि आप सिर्फ आबू घूमने के लिए नहीं आए हैं, परंतु इस विश्वविद्यालय के ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सीखने के लिए आए हैं। तभी आप यहाँ ठहरे हैं और कल और परसों 2 दिन राजयोग से संबंधित आध्यात्मिक ज्ञान के मूल विषयों का आपका क्लासेस चलेंगे, कुछ जीवन उपयोगी विषयों पर भी आपका क्लास चलेगा, तो आप अवश्य टाइम टेबल के अनुसार चलेंगे, पूरी एकाग्रता से आप ये लेक्चर्स अटेंड करेंगे। यहाँ ये शांतिवन अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं की तलेटी में बसा हुआ है, चारों ओर पहाड़ दिख रहे हैं। इस प्राकृतिक सौंदर्य को लिए हुए और यहाँ निरंतर योग अभ्यास के भट्टियाँ, क्लासेस, कॉन्फ्रेंस चलते रहते हैं, तो आध्यात्मिक वाइब्रेशंस लिए हुए यहाँ का वायुमंडल है। इस पावन भूमि, तपोभूमि, वरदानी भूमि, परिवर्तन भूमि में आप सब पधारे हैं। जितना शांति में रहेंगे और आते जाते क्लासेस करते आप योग अभ्यास भी करेंगे तो बहुत सुंदर अनुभूति प्राप्त कर सकेंगे। इस वातावरण में आप वैसे तो पारिवारिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में, व्यावसायिक कार्यक्रमों में कई स्थानों पर गए होंगे, परंतु इस बार आपका यहाँ आना किसी और पर्पस से नहीं, परंतु अपनी आत्म उन्नति के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने स्वयं के विकास के लिए यहाँ पधारे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप अपने व्यस्त जीवन में, व्यावसायिक और व्यावहारिक जीवन में कुछ टाइम निकाल करके यहाँ आए हैं। यहाँ आपको योग के नाम पर कोई हठ योग, कोई आसन प्राणायाम नहीं करना है, हठ देह दमन की कोई क्रियाएं नहीं है। आप जानते हैं कि आजकल जो भी समस्याएं हैं मनोविकारों के कारण है, इसलिए मन और बुद्धि को एकाग्र और शुद्ध करने के लिए परमात्मा से मिलन मनाने का ये योग है। आप बहुत अच्छी तरह योग सीखेंगे। यहाँ कोई सुनी सुनाई शास्त्रों की कथाएं, कहानियां आपको नहीं सुननी है, परंतु स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं, वो ही सत्य ज्ञान यहाँ आप विभिन्न क्लासेस में सुनेंगे, समझेंगे और आचरण में लाएंगे। जितना दिन आप यहाँ रहे ज्ञान और योग में मगन रहे, इसका अध्ययन स्वाध्याय करे और आचरण में लाए। ये परम पिता परमात्मा का, सो हम सब आत्मा बच्चों का ये प्यारा घर है, इसलिए आप आराम से रहेंगे। जरूर आप एक दिन माउंट आबू भी घूमने जाएंगे, शनिवार का दिन रखा है आप सबके लिए, सुबह योग करके और एक क्लास करके नाश्ता करके फिर आप आबू घूमने जाएंगे, आबू दर्शन के लिए जाएंगे। वहाँ प्यारा पांडव भवन है जहाँ पर ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, सभी दादियों ने और आदि रत्न भाइयों ने योग किया है। कर्म भूमि उनकी रही है, तपोभूमि रही है, वो भी आप विजिट करेंगे। ऊपर एक और कैंपस है, ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड। यहाँ पर आप परम शिक्षक परमात्मा द्वारा दिया गया सत्य ज्ञान आप अध्ययन करेंगे। ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता है, इसलिए इस परम शिक्षक परमात्मा की स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आप आए हैं तो ज्ञान अध्ययन का पूरा लक्ष्य रखेंगे। और ये है शांतिवन, परम सतगुरु परमात्मा की सत्य दरबार। यहाँ हजारों की संख्या में सत्संग होता है। सत्संग सिर्फ नाम का नहीं, परंतु सत्य पिता परमात्मा का संग। क्योंकि हमारे तो 15,000, 20,000, 22,000 के ग्रुप्स स्टेट वाइज आते हैं और ये सभी भाई बहने ज्ञान का गहरा अध्ययन करते हैं, परम पिता परमात्मा के संग में रहते हैं और पवित्र योगी भाई बहनों के संग में हरेक अपने जीवन को पक्का राजयोगी और पवित्र बनते हैं। तो इस प्रकार ये सत्य सतगुरु का साचा दरबार है। इसमें सभी भाई बहनों के तरफ से सभी डिपार्टमेंट वाले, हमारे राजयोगी भाई बहनों के तरफ से, मैं अपने तरफ से भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, सत्कार करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से आप गीता दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करेंगे। परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक के इस यूनिवर्सिटी में, परम सतगुरु के इस दरबार में आप सभी रियल डायमंड्स का हार्दिक अभिनंदन है, मुबारक हो, स्वागत हो, अभिनंदन हो। एक समय में कहा जाता था, ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, तो आपको बताते हुए मुझे गर्व है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय 140 देशों में वट वृक्ष के रूप में फैला हुआ है। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, मुझे खुशी है ये बताते हुए। कभी भी इसका भी सूर्यास्त नहीं होगा, और ही आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैं आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी से अनुरोध करती हूँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत रूप से आप सबको जानकारी दे। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी, जो कि वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है और साथ साथ डायरेक्टर भी है और डॉक्टर भी है। तो कहने का तात्पर्य है, मैं संक्षिप्त में दीदी का परिचय सुनाऊंगी। 1974 में आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए, 89 में आपने अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित आपने किया ईश्वरीय सेवाओं के लिए। तत्पश्चात आपने शुरुआत में कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर में आपने अपनी सेवाएं दी। वुमन विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है और साथ साथ आपने दो किताबें भी लिखी है। देश विदेश में जाकर आपने ईश्वरीय संदेश पहुंचाया है। 91 में आप ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई। तत्पश्चात हमारी जो एक्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जो कि हमारी दादी प्रकाश बनी थी, उनकी आपने पर्सनल सेवा, व्यक्तिगत चिकित्सक के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी। तो कर्तव्य बने से आप दीदी का बहुत बहुत सम्मान करेंगे कि दीदी का ये भाग्य रहा, हमारी जो एक्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी प्रकाश मणि जी की सेवा भी आपने की है। तो देश विदेश में जाकर आपने ईश्वरीय संदेश पहुंचाया है, साथ साथ आपको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो अभी मैं दीदी जी के लिए कहना चाहूँगी, सीप को मोती मिले और क्या चाहिए, रात को चांदनी जगे तो और क्या चाहिए। डॉक्टर सविता दीदी जी के द्वारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय मिल जाए तो और क्या चाहिए, तो और क्या चाहिए। तो मैं आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी से अनुरोध करती हूँ विस्तृत रूप से ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में आप सबके समक्ष जानकारी रखे। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी।
ओम शांति। आप सभी फिर से एक बार मुस्कुराते हुए बोलेंगे ओम शांति। आप सभी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मुंबई एवं अन्य भारत के प्रांतों से पधारे हुए भाई बहनों का यहाँ शांति वन के इस विशाल परिसर के इस बेहद के डायमंड हॉल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। आपके स्वागत में मैं कहूँगी, प्रभु के घर आप पधारे, आपका ये परिवार है, प्रभु वरदानों की इस भूमि पर कोटि कोटि स्वागत, अभिनंदन बारंबार है। आप सभी इस विद्यालय के संपर्क में हैं, तभी आप यहाँ मुख्यालय में पहुँचे हैं और कुछ ना कुछ विद्यालय के से परिचित भी हैं आप, लेकिन फिर भी आज हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों के बारे में और भी कुछ, जो भी यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिसर हैं, उनकी आपको जानकारी देते हुए परिचय देंगे। तो ये विश्वविद्यालय एक बहुत ही यूनिक विश्वविद्यालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है, जिसके 140 देशों में करीब 8000 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं, जहां 12 लाख से अधिक भाई बहनें नियमित आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंच बना रहे हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अन्य विश्वविद्यालयों की तरह से कोई डिग्री नहीं दी जाती, पर जैसे वहाँ अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं, विज्ञान, तकनीकी, कला, वाणिज्य आदि विषय, और उसको डिग्री लेकर मनुष्य जो हैं वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं या धन उपार्जन करते हैं जीवन यापन के लिए, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनुष्य के जीवन में गुणों और शक्तियों का विकास होता है और विपरीत परिस्थितियों में भी सुख शांति से जीवन जीने की कला आ जाती है। तो यहाँ भी अनेक विषय हैं और लक्ष्य भी हैं, जैसे उन विश्वविद्यालयों में लक्ष्य लेकर पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेंगे तो इंजीनियर बनना है, लॉ कॉलेज में पढ़ेंगे तो लॉयर या जज बनना है, तो ऐसे ही विद्यालय का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति, यानी नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण हो और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो। तो यहाँ जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो चार विषय, ज्ञान, योग, दिव्य गुणों की धारणा और रूहानी सेवा। तो ईश्वरीय ज्ञान जो सत्य ज्ञान परमात्मा के द्वारा दिया गया, जिसके लिए भक्ति में हम कहते आए तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सतगमय मृत्यु माँ अमृतगमय, हे ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृत्व की ओर ले चलो। तो फिर कौन सा अंधकार है जीवन में? तो ये अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो सत्य ज्ञान का प्रकाश हमें देते हैं। तो उसमें है स्वयं का सत्य ज्ञान, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या है। फिर परमात्मा का सत्य ज्ञान, यानी ईश्वर का नाम रूप धाम कर्तव्य क्या है, उनसे हमारा संबंध क्या है। फिर समय का ज्ञान, वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है और इस समय के अनुसार हमारा पुरुषार्थ और कर्तव्य क्या होना चाहिए। ऐसे ही कर्मों की गति का ज्ञान, कर्म कर्म विकर्म की गति जो परमात्मा ने समझाई। फिर सहज राजयोग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य विषय है और योग तो वर्तमान में लोकप्रिय है, हम सभी योग के विषय में जानते हैं, लेकिन योग हम आसन प्राणायाम को समझ लेते हैं और ज़्यादातर उसको हम स्वास्थ्य के संदर्भ में समझते हैं, लेकिन सहज राजयोग आसन प्राणायाम नहीं है। ये आत्मा का परमात्मा से स्नेहपूर्ण संबंध है। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, हम तनाव मुक्त होते हैं। वर्तमान समय वैसे भी तनाव, भय और चिंता का युग है। तो आज विश्व जो है वो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है और अब तो 21 दिसंबर को भी वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया गया है। तो इतना विश्व भी योग को महत्व देने लगा है। तो आप आने वाले 2 दिनों में बहुत विस्तार से राजयोग के बारे में सुनेंगे भी और उसका अभ्यास भी करेंगे। इस दिव्य गुणों की धारणा, जब हम ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन में दिव्य गुण आने लगते हैं। वर्तमान समाज में हम देखते हैं मूल्यों का तेजी से ह्रास हुआ है। कहते हैं आज धन की इतनी गरीबी नहीं है जितनी चरित्र की गरीबी है, और ग्रस्त एक जंजाल बन चुका है। तो वो ग्रस्त पुनः आश्रम बन जाए, जिसे ग्रस्त आश्रम कहा जाता है, वो दिव्य गुणों से ही संभव है। और ऐसे ही रूहानी सेवा यानी जन जन तक ये ईश्वरीय संदेश पहुंचाने की सेवा, ये जागृति सभी में आए। आज बहुत प्रकार की समाज सेवा की जाती है, लेकिन वो लोगों के अभाव को अल्पकाल के लिए ही दूर कर सकते हैं, सदाकाल के लिए नहीं। लेकिन ये ईश्वरीय सेवा व्यक्ति को सदाकाल के लिए योग्य और समर्थ बना देती है। तो अध्यात्म के द्वारा हम ऐसी सेवा जन जन की कर पाते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1936 में अविभाजित भारत के हैदराबाद सिंध में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम से हुई, जो अपने लौकिक जीवन में दादा लेखराज नाम से बहुत सुप्रसिद्ध हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। वो बहुत धर्मपरायण थे, गीता पाठी थे और ईश्वर के प्रति उनकी बहुत लगन थी, और इसीलिए उन्होंने काफ़ी गुरु भी किए अपने जीवन में। लेकिन जब उनकी 60 वर्ष की आयु थी तो उनको ईश्वर प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा हुई और उनके इन्हीं प्रयासों में उन्हें परमात्मा के दिव्य साक्षात्कार होने लगे, और इन दिव्य साक्षात्कारों ने उनके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया। और उन्होंने अपना बिजनेस जो कलकत्ता में मुख्य रूप से था उसे समेटकर वो हैदराबाद सिंध में आ गए और वहाँ प्रतिदिन सत्संग होने लगा। तो सत्संग के दौरान हैदराबाद सिंध में अनेक अन्य को भी ऐसे दिव्य साक्षात्कार होने लगे और एक बड़ा संगठन बन गया जिसे ओम मंडली नाम मिला। और ये एक वर्ष के अंदर ही पिताश्री जी ने अपनी सब चल अचल संपत्ति ईश्वरीय ट्रस्ट बना करके खासकर बहनों माताओं के नाम से 8 बहनों माताओं को नियुक्त किया और उनको उन्होंने निमित्त बनाया। और तब से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संचालन एवं प्रशासन बहनों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा होता है। और मैं गर्व से कहूँगी कि वर्तमान में ये विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है जिसका संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो 14 साल तक ये वहाँ कराची में रहे, और जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके पश्चात 1950 में ये पूरा संगठन माउंट आबू में स्थानांतरित हुआ। और तब तक जो परमात्मा शिव के द्वारा ज्ञान के राज जो स्पष्ट होने थे, जो कहा सत्य ज्ञान परमात्मा ने दिया, तो यहाँ माउंट आबू में आने के बाद देश में सेवाएं शुरू हुई अलग अलग शहरों में, विशेष रूप से दिल्ली में, पंजाब में, अमृतसर में, अंबाला में, यूपी में, कानपुर में, लखनऊ में, अहमदाबाद में, मुंबई, कलकत्ता में और भी अनेक शहरों में। तो पिताश्री जी के होते हुए ही काफ़ी सेवा केंद्र भारत में खुलने लगे। और सन 1952 में जब जापान में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें संस्था को निमंत्रण मिला, तो यहाँ से 3 प्रतिनिधि उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए, जिन्होंने एक वर्ष तक फिर वहीं जापान, हांगकांग और इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों में रह करके अपनी सेवाएं दी। और इस तरह से विदेश सेवा की नींव पड़ी। 1969 में पिताश्री जी ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, आप अव्यक्त हुए, और उनके पश्चात हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका बनी, जिनके नेतृत्व में, मैं कहूँगी कि कुशल नेतृत्व में, इस विद्यालय की सेवाओं का तीव्र गति से विस्तार होने लगा। जो एक पौधा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने सिंचित किया था, उसने एक विशाल वटवृक्ष का रूप लिया और विदेशों में भी 1974 से लंदन में सेंटर बना और तेजी से अनेक देशों में सेवा केंद्रों की स्थापना होने लगी। और 1986 में जब अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष था, उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस प्रोजेक्ट, शांति के लाखों क्षण अनेकों आत्माओं से एकत्रित किए गए। उनसे ये निवेदन किया गया कि विश्व शांति के लिए एक मिनट ही सही, नहीं तो कुछ सेकंड ही सही, हम शांति का दान दें। और इस तरह से विद्यालय के इस कार्य को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी को अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत का पुरस्कार प्रदान किया। और इसके पश्चात भी 5 शांति दूत पुरस्कार मिले और तब से ये विद्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ से संलग्न है और वहाँ के जनसंपर्क विभाग में इसे परामर्शदाता का स्थान प्राप्त है और इसके यूनिसेफ और इकोसेक में भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। वहाँ यूएन में अपना एक ऑफिस भी है जहाँ पर अपनी बहनें वहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं उन प्रोजेक्ट्स में अपनी सेवाएं प्रदान करती रहती हैं। 1987 में ग्लोबल कॉपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड एक प्रोजेक्ट लिया गया विश्व स्तर पर, जिसमें बेहतर विश्व के लिए या एक सुखमय संसार कैसा होना चाहिए इसके लिए सबके विजन्स लिए गए और फिर उसको एकत्रित करके एक पुस्तक बनी, ग्लोबल विजन्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड, नए विश्व के लिए या बेहतर विश्व के लिए संकल्पनाएं। और उसके पश्चात लिविंग वैल्यूज का प्रोजेक्ट, वो भी विश्व स्तर पर चला, जिसमें विद्यार्थियों के लिए जीवन मूल्यों की शिक्षा अनेक विश्व के विद्यालयों में अपने यहाँ के भाई और बहनों के द्वारा प्रदान की गई। 1993 में जब विवेकानंद जी का शताब्दी वर्ष था, जो उन्होंने शिकागो में अपना वक्तव्य दिया था, तो उस अवसर पर वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के उस अवसर पर दादी प्रकाश मणि जी को निमंत्रण मिला और दादी जी ने भारत को और इस विद्यालय को, अपने विद्यालय को एक मुख्य वक्ता के रूप में रिप्रेजेंट किया। दादी जी को बाद में उदयपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री भी प्रदान की गई। फिर 1999 के बाद 2000 में जब शांति की संस्कृति का वर्ष यूनिसेफ के द्वारा घोषित किया गया, तो उसमें एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें सबके द्वारा कुछ फॉर्म्स भरवाने थे शांति की संस्कृति के लिए, तो इसके लिए भी विद्यालय ने सबसे अधिक संख्या में वो फॉर्म्स भरवाए। तो ये भी एक सराहनीय कार्य को देखते हुए यूनिसेफ की तरफ से अवार्ड मिला विद्यालय को। 2007 तक दादी जी रहे, फिर दादी प्रकाश मणि जी के अव्यक्त होने के बाद दादी जानकी जी इस विद्यालय की मुख्य प्रशासिका बनी। आदरणीय दादी जानकी जी विशेष रूप से विदेश सेवाओं के निमित्त रहे और जब वो विदेश में रहे तो उनके राज्यों के प्रमाण के लिए अनेक टेस्ट किए गए, जैसे टेक्सास यूनिवर्सिटी ने उनका मस्तिष्क का परीक्षण किया और फिर जब देखा कि परिणाम में वो हमेशा ही वो स्टेबल रहे, कई प्रकार से उनसे प्रश्न पूछे गए और भी किसी भी तरह से उनसे चर्चा की गई, तो देखा उनका माइंड जो है वो हर स्थिति में स्टेबल है, तो फिर उनको उपाधि मिली द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, विश्व के सबसे स्थिर मन वाली महिला। और दादी जी ने 104 वर्ष तक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया। 2020 में आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी मुख्य प्रशासिका बने, उनके पश्चात हमारी आदरणीय दादी रत्न मोहिनी जी मुख्य प्रशासिका रहे, अभी ही 101 वर्ष की आयु में एक मास पूर्व ही लगभग हमारी दादी रतन मोहिनी जी अव्यक्त हुए हैं और वर्तमान में आदरणीय मोहिनी दीदी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं, जो मुख्य रूप से न्यूयॉर्क में निवास करते हैं, पर यहाँ भी समय प्रति समय आवश्यकता अनुसार वो मुख्यालय में भी आते हैं। तो इस विद्यालय के आप मुख्यालय में पधारे हैं, यहाँ पर अनेक परिसर हैं, मुख्य रूप से अभी आप शांतिवन में इस राजयोग शिविर अनुभूति शिविर में आए हैं, जो डायमंड हॉल आप जिसमें बैठे हैं, ये एशिया का 5वां सबसे बड़ा हॉल विदाउट पिलर ये हॉल है, और इसके अलावा भी यहाँ 2-3 हॉल और हैं। यहाँ सोलार एनर्जी का प्रयोग होता है कुकिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, तो उसके लिए इंडिया वन सोलार यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। कैंपस की लगभग आधी से अधिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उस सोलार के द्वारा ही जनरेट की जाती है। और जब आप माउंट आबू जाएंगे तो वहाँ पर ज्ञान सरोवर, जिसे एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड या एकेडमी फॉर हायर लर्निंग कहा जाता है, वहाँ अपने विभिन्न प्रोफेशनल्स के कार्यक्रम चलते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पर अनेक प्रभाग बने हुए हैं, जिसमें है एडमिनिस्ट्रेशन विंग, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग, एजुकेशन विंग, बिजनेस इंडस्ट्री विंग, मेडिकल विंग, मीडिया विंग, स्पोर्ट्स विंग, सोशल सर्विसेज विंग, यूथ विंग, विमेन विंग, ऐसे 20 विंग जो हैं अनेक व्यवसायों से संबंधित वो बने हुए हैं, और उनके लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज या हेल्दी लाइफस्टाइल या लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स, ऐसे अनेक कार्यक्रम उनके क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं उसमें वो एफिशिएंटली काम कर सकें और ज़्यादा सक्सेसफुल रहें, आध्यात्मिकता के समावेश से वो अपने जीवन में और कार्य में, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन समय प्रति समय होता रहता है, जिसमें वर्तमान में भी अभी रूरल डेवलपमेंट विंग की कॉन्फ्रेंस ऊपर चलने वाली है, और इसके पूर्व में मीडिया विंग का कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ पर, और ऐसे समय प्रति समय कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वहाँ आयोजित होते रहते हैं। तो ज्ञान सरोवर में भी इकोलॉजिकल बैलेंस का बहुत ध्यान रखा गया है, वहाँ पर साइकिलिंग होती है पानी की, और वहाँ पे भी सोलार कुकिंग सिस्टम लगा हुआ है। ऐसे ही पांडव भवन जो अपना कॉम्प्लेक्स है, पांडव भवन जो मूल कॉम्प्लेक्स हम कहेंगे, क्योंकि जब पिताश्री जी पूरे संगठन के साथ माउंट आबू आए तो पांडव भवन में ही रहे लंबे समय तक। मातेश्वरी जी भी जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका थी, तो उनके वहाँ पर स्मृति स्थान है, जो बाबा का कमरा है जहाँ बाबा मिलते थे, शांति स्तंभ जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया, बाबा की झोंपड़ी जहाँ वो सबसे मिलते थे, बाबा के कमरे में सब बैठ करके अभी वर्तमान में योग अभ्यास का अनुभव करते हैं, और स्त्री हॉल जहाँ पर पिताश्री जी क्लासेस लेते थे। तो पांडव भवन जैसे 4 धाम हम कहते हैं कि ये मुख्य स्थान है वहाँ पर। और फिर हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल है माउंट आबू में, जो चिकित्सा सुविधाएं, सेवाएं प्रदान करता है निरंतर, जो अपने यहाँ अतिथि या गेस्ट आते हैं, और साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी सभी प्रकार की स्पेशलिटीज़ हैं। और सबसे विशेषता ये है इस अस्पताल की कि इसमें सभी पैथीज का समावेश किया गया है, एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथिक है, आयुर्वेदीय है, मैग्नेट थेरेपी, फिजियोथेरेपी, योगा थेरेपी, साथ में मेडिटेशन रूम भी बना हुआ है वहाँ पर. तो जिसको जिस पैथी में रुचि है, जो जिस तरह से इलाज लेना चाहता है, वो सुविधा उसको वहाँ मिलती है. और इसके साथ साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं, जिसमें आपने हार्ट पेशेंट्स के ऊपर कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिग्रेशन प्रोग्राम एक रेगुलर बेसिस पर, ये 25 साल से भी अधिक हो गए जो ये रिसर्च प्रोग्राम चलता रहा है. और अनेक हृदय रोगियों ने, थाउजेंड्स हम कहेंगे, उन्होंने इस प्रोग्राम से लाभ लिया है, जिसमें उनकी जीवन शैली को परिवर्तन किया जाता है. ये रेजिडेंशियल कैंप होता है, जिसमें लगभग 7 दिन उनको रहना होता है. और यहाँ पर वो हाई फाइबर लो कोलेस्ट्रॉल डाइट जो हमें लेनी चाहिए, फिर रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम 45 मिनट रोज एक्सरसाइज, और तीसरा रोज 1 घंटा अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास. तो ये 3 परिवर्तन वो अपनी लाइफस्टाइल में जब लाते हैं, तो ये देखा गया कि 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ऐसे पेशेंट जिनके 90% से ऊपर ब्लॉकेजेस थे, जिनको बाईपास सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया था, वो बिना बाईपास सर्जरी के ही उनके ब्लॉकेजेस खुल गए. और लगभग 10,000 से भी अधिक मरीज जो हैं वो अभी तक बिना ऑपरेशन किए स्वस्थ हो चुके हैं. तो डॉक्टर आपसे मिलेंगे भी सही, जो जिनको भी ऐसा कोई तकलीफ है वो उनसे मिल सकते हैं, और इस विषय में उनसे क्या उनको फॉलो करना चाहिए वो उसमें राय दे सकते हैं. तो अस्पताल की जो सेवाएं हैं वो समाज सेवा के रूप में भी होती हैं. मोबाइल कैंप्स लगाए जाते हैं गांव में समय प्रति समय, साथ में ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित किए जाते हैं. अपने ऑप्थाल्मिक इंस्टीट्यूट है, ऑप्थाल्मिक इंस्टीट्यूट के द्वारा समय प्रति समय गांव में गरीबों के लिए आई कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें फ्री में उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन करना और उसके साथ साथ लेंस इम्प्लांट भी फ्री में किए जाते हैं. तो इस तरह से जो भी अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाएं हैं, हम कहेंगे कि विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय से कैसे हम इस विश्व को एक सुखमय संसार या स्वर्णिम संसार बना पाए, ये प्रयास निरंतर और अनवरत जारी है. तो ये था इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संक्षिप्त में जो गतिविधियां चलती हैं यहाँ मुख्यालय में भी, और विश्व स्तर पर जो अनेक सेवाएं चल रही हैं. ओम शांति.
ओम शांति. आने वालों के कई नाम होते हैं, कई बार लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो जाता है, कई पहुंच जाते हैं. हमारी दादियां कहती हैं जो पहुंच गए वो महान भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली है. जिस धरती पर भगवान का अवतरण होता है, जिस हॉल में अनेकों बार परमात्मा का अवतरण हुआ, ऐसे हॉल में बैठने का आप सभी का भाग्य हुआ है, तो आप सभी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं का बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं कि आप पहुंच गए भगवान के घर में राजयोग शिविर करने के लिए. हमारे बीच राजयोगी ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई जी उपस्थित हैं. सभी करतल ध्वनि से आप इनका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे. वर्तमान समय आप मुंबई घाटकोपर में निवास करते हैं. आप आध्यात्मिक प्रेरक वक्ता हैं, लोकप्रिय कॉलमनिस्ट ब्रह्मा कुमारी इस मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है. 6 भाषाओं के भाषाविद हैं. देश विदेश के अखबारों में साप्ताहिक कॉलम लिखते हैं. अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती में 50 से अधिक समाचार पत्रों में 8,500 प्लस अधिक पब्लिकेशंस आपने प्रकाशित किए हुए हैं. और साथ ही साथ आपको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं. वर्ल्ड पीस कांग्रेस के द्वारा पीस मैसेंजर अवार्ड, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस कांग्रेस के द्वारा मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर इन मेंटल हेल्थ, सिक्किम अवार्ड्स में राइटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है. तो अभी मैं निकुंज भाई जी से अनुरोध करती हूँ, राजयोग शिविर का जो शीर्षक है, थीम है वैश्विक एकता के लिए, राजयोग अनुभूति इस विषय पर संबोधन करेंगे राजयोगी ब्रह्म कुमार निकुंज भाई जी।
ओम शांति। अरे थोड़ा जोर से ओम शांति। हाँ तुसी मेरा दिल खुश कर देता। बरोबर बोला? बरोबर बोला पंजाब वाले? बोलो बरोबर बोला? तुसी साडा दिल खुश कर देता। देखिए बहन जी ने कहा यहाँ पहुंच गए वही बड़ी बात है। तो मैं 35 वर्ष हो गए मुझे, 12 साल का था जब यहाँ आया। मुझे अंदर अंदर इस बात की आज बहुत खुशी है। मेरी टीचर बीच में बैठी है शीलू दीदी, इनके सामने स्कूल में पढ़ता था, इनके साथ में बैठ पा रहा हूँ तो ये लायक ही इन लोगों ने आज बनाई तब बैठ पा रहे हैं। तो मैं 35 सालों में बहुत सारे लोगों को ऐसे मिला हूँ जो कहते हमको आना है एक बार माउंट आबू, अभी तक आ ही नहीं पाए। कितने लोगों को मैं जानता हूं और कई लोग ऐसे हैं जिनको आज सुबह बोला भैया रात का ट्रेन है चलोगे क्या? हाँ बैठ जाते आ जाते। तो ऐसा भी है तो वैसा भी। तो ये जो ओम शांति बोलते हैं ना, अब आपको कहूंगा अशांति बोलो, बोलोगे? बोलो अशांति बोलोगे? अरे हाँ के ना तो बोलो, नहीं बोलोगे ना? तो ये और ओ के बीच का जो फासला है ना, 3-4 दिन में आपको तय करा देंगे हमारे जो भी तपस्वी महान बहने हैं। तो किसी किसी का ऐसा अशांति तो होता है ना, जीवन में है अशांति? हाँ या ना? अरे बोलो जोर से, हाँ या ना? है ना? तो अभी यहां से 3-4 दिन में ओम शांति होके निकलोगे आप, तो अर्थात वहां जाएंगे आप जहां से भी आए, अरे इसका तो चेहरे का कलर चेंज हो गया है, इनका आंखें अलग हो गई, पहले तो गुस्सा करते थे चिड़चिड़ करते थे, अभी तो एकदम शांत हो गए। कहाँ जाके आए आप, क्या हो गया? सब पूछेंगे आपसे। यहां से बाहर जाएंगे आप एकदम बड़े सेलिब्रिटी बन जाएंगे। आ रहा है समझ में सेलिब्रिटी क्या होता है? अरे नामी ग्रामी VIP बन जाएंगे आप। माउंट अबू जाके आए? पढ़े माउंट अबू जाके आए, सब आपको पूछेंगे। तो इसीलिए ये कोई, तो मैं कहता हूं हमेशा ये कोई संस्था नहीं है, ये आपका दादा नाना का घर है, उधर आए हो आप लोग, ये कोई संस्था में नहीं आए हैं। अभी वेकेशन चल रहा है ना, वो मई महीने में स्कूल का छुट्टी होता है तो कहाँ दादा दादी के घर जाते हैं, नाना नानी के घर जाते हैं। तो आप लोग ऐसे इधर नाना नानी दादा दादी के घर में आए हो, संस्था में नहीं आए हो, तो इसीलिए घर में आए हो ऐसे समझ कर। बाकी जाते हैं तो कुछ घर के बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं ना छोटा मोटा बात, 3 दिन में आपको सिखा देंगे अच्छी अच्छी बातें जो आप भी जा कर के दूसरों को सिखा सकोगे। बाकी देखो विषय जो है बोला कि वैश्विक एकता के लिए राजयोग की अनुभूति। अभी ये जो समय चल रहा है तो हर एक चाहता है मन में सबको हम एक हो जा रहे, पर मैं आया इधर मुझे बाहर भी सुनाया कहाँ कहाँ से आए हैं, ये इधर अभी जो मैं सामने देख रहा हूं इससे बड़ा दाखिला वैश्विक एकता का क्या है? आप सब देखो पंजाब हिमाचल हरियाणा मुंबई कौन कहाँ एक होके बैठे हो ना सब, हाँ या ना? अच्छा इधर से बाहर जाएंगे ये पूरा कॉम्प्लेक्स में भी, कोई साउथ से कोई विदेश से भी है, ये पूरा शांतिवनी वैश्विक एकता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इससे ज्यादा वैश्विक एकता कहाँ देखने मिलेगी? देखो ऐसा आप जहां खाना खाएंगे सब उधर ही खाना खाते एक ही जगह में, ऐसा नहीं कोई अलग कोई सब एक ही जगह खाना खाने वाले। तो कभी सुना है क्या पंजाब वाले भी एक ही जगह खाना खाएंगे, मुंबई वाले भी एक ही जगह, हरियाणा वाले भी एक ही जगह, हिमाचल वाले भी एक ही डाइनिंग रूम में सब खाना खाएंगे, एक ही खाना खाएंगे, अलग नहीं। अब इससे ज्यादा एकता क्या चाहिए? तो देखिए, विश्व में सभी चाहते हैं हमको एक होना चाहिए, समझते हैं, अंदर अंदर महसूस करते हैं, पर हो नहीं पाते हैं। तो उनको क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? तो उनको कहिए माउंट आबू जाके आओ ना भैया एक बार, तो हो जाएगा इजी। तो एक होना है जिसको, इसमें है कुछ नहीं। वो जो पहले तो रेडियो हम बच्चे थे छोटे, आजकल के तो सब वो है ना, हम तो रेडियो वाले हैं, तो रेडियो में वो फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ता था। तो ये यहाँ का फ्रीक्वेंसी अगर सबका सेट हो जाएगा तो वैश्विक एकता तो एक सेकंड में हो सकता है, पर अभी वो फ्रीक्वेंसी सेट ही नहीं हो रहा है। किसी का कहाँ, किसी का कहाँ, किसी का कहाँ, तो जिस वजह से सभी का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, चाहते हैं और वो एंटीना जो है वो बरोबर सिग्नल पकड़ नहीं रहा है। तो इसीलिए आवश्यकता है योग्य मार्गदर्शन की, योग्य शिक्षा की, और योग्य जगह पर जाकर के योग्य शिक्षक को पाने की। तो आप नसीबदार हो, भाग्यशाली हो, जैसे भी करके दूर दूर से पहुंच तो गए। अपना भाग्य की ताली बजाओ, अभी जोर से बजाओ। कम भाग्य नहीं, आज आपको लग रहा है कि क्या है इसमें, ठीक है अभी, बट आपको देखो थोड़ा समय के बाद आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा। हम लोग गए थे उधर 3 दिन, बहन जी ने सिखाया था, ऐसा कुछ अचानक वापस घटनाओं का क्रम हो जाएगा तो यहाँ जो सीखे ना वो याद आएगा। तो इसीलिए जो अभी कुंभ मेला हुआ, वैसे भी सभी जो जाते हरिद्वार गंगा में डुबकी लगाते, तो हम लोग तो छोटे थे तो वो साथ में जो दादा दादी वगैरह थे वो एक वो केन लेके आते थे, वो टम्बलर, वो गंगा जल भर के जाते थे घर में। वो क्या है, वो बड़ा बड़ा त्यौहार के दिन, दिवाली के दिन एक ढक्कन वो बाल्टी में डाल के नहा लेने का करते हैं ना, ऐसा करते हैं। तो अभी इधर आए हैं तो अपना अपना टम्बलर भर के जाओ। किधर है टम्बलर, लाए कि नहीं साथ में, लाए कि नहीं लाए? तो इधर से भर के जाओ, जितना आपका ताकत है, कैपेसिटी है, सब भर के जाओ। अभी मालूम नहीं वापस चांस मिलेगा कि नहीं आने का। हम तो चाहते हैं आप हर साल आओ, आपका घर है, पर चांस मिले न मिले तो भर के जाओ। फिर कभी ऐसा परिस्थिति आ जाए तो एक ढक्कन टम्बलर से निकाल के क्या करेंगे, ओम शांति हो जाना। कभी अशांति जैसा आया तो करेंगे या नहीं करेंगे? अरे बोलो हाँ जी, इतने बड़े टीचर बैठे हैं, बोलेंगे क्या? हाँ नहीं बोल रहे, ना नहीं बोल रहे, हाँ के ना करेंगे ना। तो अभी देखिए माउंट आबू में तो सब आते हैं, वैसे घूमने ज्यादा आते हैं, ये थोड़ा हिल स्टेशन है ना, परंतु आप तो घूमने भी मिलेगा साथ साथ, 2 in 1, 3 in 1, तो घूमने भी मिलेगा, अच्छा ज्ञान भी मिलेगा, और सबसे बड़ा क्या मिलेगा, बहुत 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 बड़ा लाखों का परिवार मिलेगा। मिल गया, किसी को पूछते हैं तुम्हारा भाई कौन है फैमिली में, नहीं मेरे मम्मी पापा, एक भाई एक बहन और दादा दादी, बस इतना ही है। अरे आप लोगों का परिवार में, बहन ने बताया ना, 12 लाख से भी ज्यादा भाई बहन है, आप आज से उस परिवार का हिस्सा बन गए। कोई आपसे पूछे आपका कितना है फैमिली में, अरे हमारा तो 12 लाख से भी ऊपर है, क्या बात कर रहे हैं, कोई कम बात है? तो इसीलिए ये 3 in 1 की प्राप्ति की आप सभी को अनेक गुना मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति,
ओम शांति। हम कहना चाहेंगे ओम शांति से होगी जीवन में सुख शांति, तो सुख शांति आपका जीवन का श्रृंगार बन जाएगा, ये गारंटी है। यहाँ से जब जाओगे सुख शांति आपके जीवन का श्रृंगार बन जाएगा, क्योंकि परमात्मा के घर में आप सभी आए हैं। इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो, अभिनंदन हो और फिर से स्वागत हो। तो आप सभी महान और हमारे प्रिय मेहमानों का परिचय हम आदरणीय दीदियों से कराना चाहेंगे। सबसे पहले जो पंजाब, उत्तरांचल, हिमाचल, हरियाणा, हाँ अच्छा, जो भी पंजाब से आए हैं खड़े हो जाइए, जो भी पंजाब से आए हैं हाथ हिलाकर अपना परिचय देंगे, मुस्कुराते हुए देवताएं बनने वाले हैं। तो बाकी सभी तालियां बजाइए उनके लिए जो भी आए हैं, परमात्मा के घर में पहुंच गए, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बैठिए। जो हरियाणा से आए हैं वो खड़े हो जाएं, जो हरियाणा से आए हैं बहुत बहुत स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत। बाकी सभी जोरदार तालियां बजाइए, खुशी से बजाना है। बैठिए बैठिए। और आपको एक बात बता देते हैं, अगर जब आप खुश होते हो ना, अगर ताली बजाओगे तो कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। अभी आप खुश है ना, तो जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। तो अब जो भी जम्मू कश्मीर से आए हैं, जम्मू कश्मीर वाले खड़े हो जाइए, जो भी जम्मू कश्मीर से आए हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाकी सभी जोरदार ताली बजाइए, खुशी से बजाएंगे, हार्ट अटैक नहीं होगा, इसलिए हार्ट मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। बैठ जाइए। अब जो हिमाचल प्रदेश से आए हैं खड़े हो जाए, जो भी हिमाचल प्रदेश से आए हैं बहुत बहुत स्वागत है, हाथ हिलाइए, हाथ हिलाकर अपना परिचय दीजिए। हाँ बैठिए। अब जो उत्तरांचल से आए हैं खड़े हो जाइए, जो भी उत्तरांचल से आए हैं बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बैठ जाइए। अब जो भी मुंबई से आए हैं, बॉम्बे खड़े हो जाइए, जो भी बॉम्बे से आए हैं बहुत 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 स्वागत हो, खुशी से ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए, मुस्कुराते हुए ताली बजाइए। बैठिए। अब जो कर्नाटक से आए हैं खड़े हो जाइए, जो भी कर्नाटक से आए हैं, है इधर, जो भी कर्नाटक से आए हैं आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, ताली बजाइए अच्छे से, खुशी से। अब जो भोपाल से आए हैं, भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जो भी आए खड़े हो जाए, हाथ हिलाकर अपना परिचय देंगे मुस्कुराते हुए, बाकी सभी जोरदार तालियां बजाते रहिए, बजाते रहिए। ठीक है, बैठ जाइए। अब जो ईस्टर्न से आए, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, जो भी आसाम से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं खड़े हो जाए अपने स्थान पर, खड़े हो जाए जो भी आए हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, पीछे खड़े हैं सभी ताली बजाइए खुशी से, थैंक यू आप सभी का। जो दिल्ली से आए हैं खड़े हो जाए, जो दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, हाँ बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, वेलकम भगवान के घर में, प्रभु के घर में, आपके अपने ही घर में हम स्वागत करते हैं। फिर अब जो भी राजस्थान से आए हैं खड़े हो जाए, जो भी राजस्थान से आए हैं, हाँ आपका भी बहुत 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 स्वागत है। जो यूपी से आए हैं खड़े हो जाए, जो यूपी से आए हैं बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है परम शिक्षक के इस यूनिवर्सिटी में। जो गुजरात से आए हैं खड़े हो जाए, जो भी गुजरात से आए हैं, है गुजरात से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यूपी से जो आए हैं, यूपी से जो आए हैं खड़े हो जाए अपने स्थान पर, उत्तर प्रदेश, बहुत 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 स्वागत है, सभी ताली बजाइए जोरदार, थैंक यू। भगवान के घर में, परम सतगुरु के दरबार में आपका स्वागत है। प्लस अभी जो भी इंदौर से आए हैं, जो भी इंदौर से आए हैं खड़े हो जाए, इंदौर वाले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आए हैं खड़े हो जाए, आए हैं पीछे खड़े हैं, बहुत 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 स्वागत है। अच्छा अभी जो भी बच्चे आए हैं खड़े हो जाए, जो भी बच्चे आए हैं आपके लिए विशेष क्लासेस भी रहेगा, बच्चों का विशेष स्वागत करिए, जोरदार ताली बजाइए बच्चों के लिए,
और अच्छे से खुशी से बजाइए बच्चों के लिए, बैठिए। अब जो भी हमारी टीचर्स बहने आई है, खड़े हो जाए। टीचर्स बहने मुंबई, पंजाब, भारत के सभी राज्यों से आए हुए सभी टीचर्स बहने, बीके गाइड भाई बहने, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए और अच्छे से बजाइए खुशी से। देखिए कितना मेहनत से आपको यहाँ तक पहुंचा दिया ईश्वर के घर में। हम सभी टीचर्स भाई बहनों का, बीके गाइड भाई बहनों का जो शिविर की पार्टी लेकर आए हैं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। बैठिए, बहुत अच्छा। केरला से जो आए हैं, खड़े हो जाइए जो भी केरला से आए हैं, बहुत अच्छा। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। सभी जोरदार ताली बजाइए खुशी से। प्रभु के घर में, आपके अपने ही घर में, सतगुरु के इस दरबार में स्वागत है आप सभी महान आत्माओं का। बैठिए, अभी हम विशेष टीचर्स बहनों से कहेंगे, जो भी बीके टीचर्स बहने और बीके गाइड भाई बहने आए हैं, आपके लिए जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा, इसलिए अभी ही यहाँ से उठेंगे और दादी जी मीटिंग हॉल के पीछे जाएंगे बहनों के साइड पर। तो अभी ही उठिए, डॉक्टर सविता बहन मिलेंगे और आप सबको इंस्ट्रक्शंस भी मिलेगा। जो भी बीके टीचर्स बहने, बीके गाइड्स जो भी आए हैं, कृपया आप वहाँ पर जाए, आपको जरूरी इंस्ट्रक्शंस दी जाएगा। और जो भी गाइड भाई बहने जो ग्रुप को लेकर आए हैं, कृपया वो भी वहाँ पर जाएंगे, तो अभी जरूरी सूचनाएं दी जाएगी। हमारे बीच आदरणीय शीलू दीदी जी उपस्थित है, जो भी राजयोग शिविरों के डायरेक्टर है और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है, और आप एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन है, महासम्मेलन वक्ता, प्रवक्ता, टीवी चैनल्स के और अनुवादक भी आप हैं, और साथ साथ पांचों महाद्वीपों में और आपने 70 से भी अधिक देशों में भ्रमण आपने किया है और ईश्वरीय संदेश जन जन तक आपने पहुंचाया है। 1960 में आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए, 69 में आपने संपूर्ण रूप से अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए आपने समर्पित किया, 70 से 74 तक आपने बैंगलोर, हैदराबाद, वहाँ पर भारत में आपने कई जगह पर अपनी सेवाएं दी है, वहाँ के सेंटर्स खोलने के आप निमित्त बने, 74 से 76 तक अफ्रीका और मॉरिशियस में आपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ से वहाँ का सेंटर्स एस्टैब्लिश आपने किया। और बहुत खुशखबरी ये है कि टीवी चैनल्स के माध्यम से सेवा शुरू कराने वाली, भगीरथ कार्य करने वाली हमारी सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी दीदी है, शीलू दीदी जी। जोरदार करतल ध्वनि से हम दीदी का अभिनंदन करते हैं। जब टीवी चैनल्स में सेवाएं शुरू हुई, दीदी के माध्यम से स्वयं परमात्मा ने ये कार्य कराया, दीदी को निमित्त बनाया। दीदी के लिए मैं कहना चाहूंगी, दीप की शोभा ज्योति से होती है, सीप की शोभा मोती से होती है। दीप की शोभा ज्योति से होती है, सीप की शोभा मोती से होती है। राजयोग शिविरों की शोभा आदरणीय शीलू दीदी से होती है, आदरणीय शीलू दीदी से होती है। अब मैं आदरणीय शीलू दीदी से अनुरोध करती हूँ, आपको शिविर की दिनचर्या, नियम, सभी इंस्ट्रक्शन से अवगत कराए आदरणीय शीलू दीदी जी। जो भी राजयोग शिविर का नियम है, दिनचर्या है, कैसे आपके क्लासेस चलेंगे, कैसे आज ही आपको बात लेनी है, दीदी जी क्लियर कट डायरेक्शंस आपको देंगे, सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और फॉलो भी करेंगे। सब 4 बजे योग करने भी आएंगे, दीदी जी सभी इंस्ट्रक्शंस देंगे आपको, नियम के जो दिनचर्या और नियम से अवगत कराएंगे आदरणीय शीलू दीदी जी।
ओम शांति। बहुत प्यार से फिर से कहेंगे ओम शांति। आप सभी को ये टाइम टेबल मिल चुका होगा, अगले 3-4 दिन का यह कार्यक्रम जो आप यहाँ भाग लेंगे, जिसमें उसमें आपने बहुत सी बातें देखी होगी। तो ये वैश्विक एकता क्यों कहते हैं, क्योंकि यही हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इस साल का थीम है, तो वैश्विक एकता कैसे आई। आज हम सब बट गए हैं, देश में भी बट गए हैं, विदेशों में भी बट गए हैं, परिवारों में भी बट गए हैं, एक दो से अलग होते जा रहे हैं, लेकिन हम सब एक थे और फिर से कैसे एक बने, उसके लिए हमें पहले मेडिटेशन सीखना होगा। क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप सब आत्माएं हो। देह के नाते तो हर एक अलग अलग है, अलग धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, देश, सब अलग अलग है, लेकिन आत्मा के नाते सब एक है, सब एक पिता परमात्मा की संतान है। तो सब आत्माएं हैं, सबका पिता एक है, सबका घर भी एक है, और सचमुच देखा जाए सबका कर्तव्य भी एक ही है। अनेक प्रकार के व्यवसाय है लोगों के, लेकिन आत्मा का कर्तव्य क्या है? आत्मा क्यों आई इस संसार में? ये बहुत बड़ा प्रश्न लोग पूछते हैं कि क्यों भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा। तो कई तो ये भी उत्तर देते हैं, भगवान ने भेजा तो खाओ पियो मौज करो, धन कमाओ, खूब लूटो, खूब ये करो, ऐश आराम करो, इसलिए हम आए इस दुनिया में। लेकिन इसलिए हम नहीं आए हैं, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी हम लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं, तो प्रकृति को वापस करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये हमारी चीज़ नहीं है। ये शरीर भी आत्मा को देना पड़ेगा प्रकृति को वापस, लेकिन आत्मा उस परमात्मा की चीज़ है। इसलिए जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं, प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना, ये नहीं कहते इनके शरीर को शांति देना। शरीर को तो जैसे ही मृत्यु हुई, शरीर की तो को तो शांति मिल जाती है। हाँ, कई ऐसे पेशेंट्स होते, इतने इतना तड़पते, इतना तड़पते, इतना कष्ट उनको, इतना दर्द होता है, जो तड़पते ही रहते हैं, और अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है, आत्मा उड़ जाती है, पंछी उड़ गया और एकदम शरीर शांत हो जाता है। तो हम शरीर की शांति की कामना नहीं करते हैं, शरीर तो शांत हो गया, लेकिन हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। और हम इसमें एक बहुत अटल सत्य बताते हैं कि जिस आत्मा ने जीवन में शांति का अनुभव नहीं किया, ये कड़वा सत्य है कि जिसने जीवन में शांति का अनुभव नहीं किया, वो मरने के बाद भी नहीं करेगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे? क्योंकि वो अशांति के ही संस्कार लेकर जाता है। जब मनुष्य मरता है तो जो उसने जीवन में कर्म किए हैं, वो कर्म उसके साथ संस्कार के रूप में जाते हैं। और फिर जब नया जन्म होता है तो वो ही संस्कार अनुसार जो उसका भाग्य बना, वो भाग्य आत्मा लेकर आती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं, ये बच्चा अपना भाग्य लेकर आया है। जो पूर्व जन्म में उसके कर्म और संस्कार थे, उस अनुसार वो भाग्य बनकर इस जन्म में उसके साथ आया है। और जब मरता है तो अपने कर्म अपने साथ ले गया और कुछ भी नहीं ले गया। तो हमें किस पर ध्यान देना होगा? हमारे कर्मों पर, हमारे संस्कारों पर, क्योंकि उसी अनुसार हमारा भाग्य बनता है। बाकी ये इस संसार में जो कुछ भी हमें मिलता है, ये सब यहाँ ही रह जाना है। तो हमें यही बताया जाता है हम क्यों आए इस दुनिया में। हर एक आत्मा एक एक्टर है, एक अभिनेता है, तो अभिनेता मंच पर क्यों आते हैं? अभिनय करने के लिए। और अभिनय करने के लिए जब आते हैं तो उनको यही कहा जाता है कि आप जो आपका सबसे अच्छे से अच्छा अभिनय है वो करो। और जब वो अच्छे से अच्छा अभिनय करते हैं तो लोग कहेंगे वंस मोर यही है। साढ़े सात का गीत बज रहा है, अब 3 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। तो हम सभी क्यों आए हैं इस संसार रूपी रंगमंच पर? अच्छे से अच्छा पार्ट बजाने, अच्छे से अच्छा रोल बजाने, एक अच्छी माँ बनकर, एक अच्छा पिता बनकर, एक अच्छा बच्चा बनकर, एक अच्छा स्टूडेंट बनकर, एक अच्छा टीचर बनकर, जो भी हमारा रोल है। और उसके लिए यहाँ आप मेडिटेशन सीखेंगे। तो कल सुबह से आपके विधिवत कार्यक्रम चलेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा सुबह 4 बजे प्रातः जागना। हम लोग तो 3:30 बजे ही जाग जाते हैं और 4 बजे से मेडिटेशन करते हैं। आपको तो फिर भी कहा गया 4 बजे जागें और हाथ मुँह धो के 4:15 बजे जो आ सकते हैं यहाँ आ करके साइलेंस में मेडिटेशन करें, 4:15 से 5:15 बजे तक। और फिर 4:15 बजे आप अगर यहाँ शांति वन में ठहरे हैं तो यहाँ के किचन में अगर आपको चाय चाहिए तो वह मिलेगी। अगर आप मनमोहिनी वन में कॉम्प्लेक्स में ठहरे हैं तो वहाँ पर दिव्य लोक बिल्डिंग है, वहाँ आपको चाय आदि जो चाहिए, कॉफ़ी जो चाहिए वो ले सकेंगे। और आप सभी तैयार होकर के 6:30 बजे सभी वापस इसी डायमंड हॉल में आएंगे। तो 6:30 बजे थोड़ा एक्सरसाइज कराएंगे आपको, और फिर उसके बाद आपका विधिवत सत्र आरंभ होगा, जिसमें कल का पहला सत्र है वैश्विक एकता के लिए आत्मा का ज्ञान। तो 8:30 बजे तक ये सत्र चलेगा, 6:30 से 8:30। फिर आप नाश्ता करने जाएंगे, सबके नाश्ते, दिन का भोजन, रात्रि भोजन बड़े डाइनिंग हॉल में है, वहाँ ही जाकर लेंगे। और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम या शांतिवन का अवलोकन करेंगे। लेकिन उसके 10 बजे, उसमें भी अगर 9:45 तक आ जाओ तो बहुत अच्छा, तो ठीक 10 बजे से आपका दूसरा सत्र आरंभ होगा। यहाँ 10 से 11:30 हर एक सत्र लगभग 1.5 घंटे का होगा, और 11:30 बजे उस सत्र के बाद फिर तीसरा सत्र शुरू होगा, 11:30 से 1:45 बजे तक। तो 3 सत्र सुबह के हैं, और फिर आप भोजन करने जाएंगे, भोजन करके थोड़ा विश्राम करेंगे, और 3:30 बजे फिर आप चाय आदि लेंगे, जो मनमोहिनी वन में है वो दिव्य लोक में लेंगे, जो यहाँ रुके हुए हैं वो शांति वन के डाइनिंग हॉल में लेंगे। और ठीक 5:45 बजे सभी वापस इस हॉल में आएंगे, और 5 बजे आपका चौथा सत्र शुरू होगा, जो 5 से 6:30 बजे तक चलेगा, और फिर 6:30 से 8:00 बजे तक फिर छठा सत्र चलेगा। तो 1 सवेरे, 2 नाश्ते के बाद 3, और उसके फिर शाम को 2 और, तो 5। तो ये 5 सत्र आपके चलेंगे, और 8 बजे आप सभी के लिए भोजन होगा। फिर भोजन करके यहाँ आपके लिए खास एक कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे, जो आना चाहे आए। तो रात्रि 9:45 से 9:50 तक या 10 बजे के अंदर तक वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप देखेंगे, और फिर वापस अपने अपने स्थान पर विश्राम करेंगे। तो दोपहर को थोड़ा 1 घंटा आपको मिलेगा, और 10 बजे सब जाकर विश्राम करेंगे, और 3:30 बजे आपका या 4 बजे आपका कार्यक्रम होगा। तो कल सारा दिन इसी प्रकार कार्यक्रम होगा, और सो भी आपका इसी अनुसार, इन्हीं टाइमिंग्स अनुसार अलग अलग सत्र चलेंगे। और ये 2 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कल और परसों, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय आपके लिए जाएंगे मेडिटेशन सीखने के लिए। और फिर 4th दिन 7:00 का सत्र होगा, और उसके बाद नाश्ता करके आप माउंट आबू घूमने जाएंगे। और हो सकता है आपको साइट सिंह वाले कहे कि कल जाओ या परसों जाओ या फिर 4 दिन के बाद जाओ, अगर आप रुक रहे, क्योंकि सभी एक साथ तो माउंट आबू नहीं जा सकते हैं, इतनी बसें नहीं होती हैं। कोई तो आज ही घूम के आए हैं, जो आज ही माउंट आबू घूम के आए हैं वो हाथ उठाएं। आज ही जो घूम के आए हैं वो लौटे ही नहीं, हाँ थोड़े बहुत आए हैं। तो इसीलिए फिर दिन का भोजन आपको वहाँ पांडव भवन में मिलेगा, वहाँ करके फिर आप और कई जगह देखेंगे माउंट आबू में, और रात्रि का भोजन यहाँ आकर के करेंगे। तो ये आपका ये 4 दिन का प्रोग्राम है, कुछ हमारे नियम है जो जिनका आपको पालन करना है, या किसी भी प्रकार का व्यसन न हो, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब आदि कोई भी व्यसन यहाँ न हो, और ये खास आप ध्यान रखेंगे। और हमारा ये यहाँ नारा है, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। तो जितना हो सके आप साइलेंस में रहें, परमात्मा की याद में रहें, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वाइब्रेशंस है, उनको भी आप सहर्ष स्वीकार कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, अपना आत्मसात कर सकेंगे और उसको अपने साथ ले जाएंगे जहाँ भी आप जाएंगे, जिससे आप समाज को बहुत बड़ा लाभ पहुँचा सकते हैं। तो ये चार दिन का कार्यक्रम है और आप सभी को बैज दिया गया होगा। ये बैज सभी को मिल गया है? जिसको न मिला हो हाथ उठाए। किसी को नहीं भी मिला है तो वो आपके जो गाइड आए हैं, जो आपको ले आए हैं, उनसे ही आप पूछना, वो आपको दे देंगे, क्योंकि उन सबको मिला होगा और आपको बांटा होगा। ये बैज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब माउंट आबू जाएंगे तो आपसे पूछेंगे आप कहाँ से आए हैं, गेट पर ही पूछ लेंगे। बैज नहीं होगा तो आपको बहुत कहना पड़ेगा, पर बैज होगा तो आपको कोई कुछ रोकेगा नहीं। और यहाँ भी डाइनिंग हॉल में जाएंगे, बैज नहीं होगा तो आपसे पूछेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत विजिटर्स भी आते हैं, घूमने वाले देखने वाले भी आते हैं। लेकिन आपका बैज जो राजयोग शिविर का है, ये विशेष है, क्योंकि आप हमारे ही कॉम्प्लेक्स में ठहरे हैं। जो दूसरे आते हैं वो तो घूमने आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो आप ही यहाँ ही चार दिन रहेंगे। तो ये बैज अगर आपको नहीं होगा तो आपसे पूछा जाएगा, और अगर फट गया तो आप दूसरा मांगे, लेकिन बिना बैज के न रहें। और किस बिल्डिंग में आप ठहरे हैं वो बिल्डिंग का नाम भी आप ज़रूर लिखें, ताकि आप मूझ न जाओ, क्योंकि कहाँ जाना है कहाँ जाना है, हो सकता है कम कई मूझ जाते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा ये स्थान है, किसी की चीज़ कोई गुम हो जाती है तो यहाँ खोया पाया विभाग है, वहाँ आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, इस हॉल में मिलती है, तो गीता बहन को आप देंगे तो वो पूछेगी और क्लास में। लेकिन आपसे विशेष निवेदन है, हम यहाँ कहते हैं 3M, 3M को आप शांत रखिए। एक है मुख का मौन, हाँ मुख का मौन, ये पहला M, मुख को आप मौन में रखिए। दूसरा है मन का मौन, तो मन को आप मौन में रखिए। और तीसरा है मोबाइल का मौन, मोबाइल का मौन, ये तीसरा मौन है, मोबाइल को भी स्विच ऑफ रखिए। ये कर सकते हैं कि सारा दिन मोबाइल चलता रहेगा? कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ मोबाइल की। आप घर में आज बता देना सभी कि हम आराम से माउंट आबू पहुँच गए हैं, अभी 3 दिन हमसे कोई बात न करे, कोई फ़ोन न करे, हम बाबा के घर में, भगवान के घर में आराम से हैं, इसीलिए 3 दिन फ़ोन नहीं करो। ऐसे हो सकता है? हो सकता है कि फ़ोन करते रहेंगे आप भी और वो भी, हाँ मोबाइल भी स्विच ऑफ, उनको बोल दो मोबाइल बंद कर रहे हैं, हम 3 दिन हमारे से बात नहीं करना। फिर तो आप वापस जाएंगे तो फिर तो आप ऑन रखेंगे, लेकिन ये ज़रूर ध्यान पर रखना। अभी आप सभी को एक सौगात मिलेगी, ये बहुत अच्छी सौगात है। एक है ये लक्ष्मी नारायण का फोटो, बहुत सुंदर ये फोटो है, माताएं अपने पूजा स्थल पर रख सकती है, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है कि नर ऐसी करनी करे तो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे तो नारी श्री लक्ष्मी बने। तो ये लक्ष्य को सामने रख कर के हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं ताकि हमारे अंदर वो गुण आ जाए जो देवताओं के गुण हैं। और दूसरी गिफ्ट है ये आध्यात्मिक डायरी, ये ऐसी विशेष डायरी है जिसमें ऊपर और नीचे ईश्वरीय महावाक्य लिखे गए हैं, और रोज़ एक न एक आप पेज खोलेंगे तो आपको वो ये स्लोगन मिलेंगे जो उस दिन के लिए आपका पुरुषार्थ होगा। और कोई भी पन्ने पर तारीख नहीं लिखी है तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इस आध्यात्मिक डायरी में आध्यात्मिक बातें ही लिखें, आपके हिसाब किताब या अकाउंट या ईमेल्स या फ़ोन नंबर, ये सब लिखना नहीं है, आध्यात्मिक बातें लिखें, जिसको जो भी पढ़े उसे भी प्रेरणा मिले अपने जीवन में उसको उतारने की। तो ये 2 गिफ्ट हैं। तो आप मंच पर आएंगे धीरे धीरे और अपनी सौगात लेंगे।
प्रभु प्यारो दो घड़ी मन प्रभु